Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Oh Agni Devata, bhi pran ka hi adhideva me ek vritti vishesh hai. Jaise adhyatma me paanch vrittiyan hai na pran ki. ऐसे मुख्य प्राण की ही अधिदैव में ये पांच वृत्तियां हैं। उसमें से एक वृत्ति बताई आदित्य देवतात्मक वृत्ति। पहले वह चाक्षुष प्राण की अनुग्राहक है और पृथ्वी अधिष्ठात्री देवता रूप जो अग्नि है वह अग्नि देवता है। अध्यात्म में आपान वृत्ति जो है उसकी अनुग्राहक देवता, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि सा एषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य। तो सा एषा यानी ये पृथ्वी अधिष्ठात्री देवता, ये क्या करती है? तो पुरुष के अंदर, पुरुष यानी ये कार्यकरण संघात शरीर, पुरुष शब्द यहां शरीर के लिए है, और इस शरीर में जो प्राण वृत्ति है वायु उपस्थ में, ये अपान वृत्ति है, और उस अपान वृत्ति का अवष्टभ्य का अर्थ है आश्रय बन करके, उसे धारित करके वृत्ति है। तो जैसे दो बांस आपस में बांध देते हैं पहले यहां पर ऐसे, और फिर उसे खड़ा करते हैं, और वैसे ही खड़े रखेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन उसको आजू बाजू में ऐसे रस्सी को खींच करके बांधते हैं, जैसे शिवलिंग बना है बांद्रा में, वर्ली बांद्रा में, तो ऊपर से भी ऐसे लोहे के वो बड़े बड़े रस्से जैसे इसे छड़ों से बांध रखा है ना, वो भी खींच करके रखा हुआ है, गिरने नहीं था। पिलरों में भी उसे रोक करके रखा है, तो उन लोहे के सरियों ने भी ऊपर से खींच करके रखा हुआ है, इसलिए समुद्र में वो गिरने नहीं दे रहे हैं। ऊपर से वो लोहे के जो तार हैं वे और नीचे के पिलर रोक करके रखा है, अवष्टभ्य का अर्थ है। ऐसे इस पृथ्वी में अधिष्ठात्री देवता जो अग्नि है वह एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के रूप में इस शरीर को अपने हमेशा खींच करके रखती है, इसलिए खड़ा शरीर गिरता नहीं है। ये पृथ्वी की अधिष्ठात्री अग्नि देवता यदि इस शरीर को रोक करके न रखे, से खड़ा हुआ बांस को चारों ओर तानी हुई जो रस्सी है खींच करके बंधी हुई, वो रोक करके न रखे यदि, तो बांस गिर जाए। ऐसे बिजली आदि के रास्ते में लगे हुए पिलर होते हैं, उनको तान लगाते हैं न तार का, वो रोक करके रखते हैं। ऐसे ही इस शरीर को खींच करके रखती है, गिरने नहीं देती यह पृथ्वी अधिष्ठात्री अग्नि देवता, ये यहां पर कहा गया। यही उसका अनुग्रह है अपान वृत्ति पर, कि वह इस शरीर को खड़ा है, चलते चल रहा है तो चलते ही रहने देती है, गिरने नहीं देती रास्ते में, और नहीं तो कोई व्यक्ति ये नीचे खींच करके न रखे बराबर, तो कोई चाहता है यहां से ऊपर उड़ जाए, तो चाहते हुए भी उड़ान वायु तो हमेशा ऊर्ध्वगति कर रहा है ना, उस उड़ान वायु के सहायता से ऊपर ही उड़ जाए, लेकिन ये अग्नि देवता खींच करके रखती, न तो उड़ने देती है न तो गिरने देती है, बराबर पकड़ करके व्यवस्थित रखती है। ये यहां पर कहा गया अवष्टभ्य, इससे कि अपानम अवपुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य सा एषा देवता विद्यते अवस्थित है पृथ्वी में, ये समझना का मतलब ये है कि एक आदित्य का अग्नि रूप है आदिदेव में, जैसे आदित्य रूप है ऐसा अग्नि भी एक रूप है अनुग्राहक, वह अध्यात्मगत अपान का अनुग्राहक है। आगे कहते हैं अंतरा यद आकाश, अंतरा शब्द का अर्थ होता है बीच में मध्य में, और किसके मध्य में, तो ये जो आकाश है ये पृथ्वी लोक और दिवलोक इन दोनों के बीच में, ये मध्य शब्द का अर्थ लेना, अंतरा शब्द का अर्थ लेना। तो पृथ्वी और दिवलोक के बीच में ये है आकाश यानी भूरलोक अंतरिक्ष लोक, उसे यहां पर आकाश कह रहे हैं। और उसमें यहां आकाश शब्द से लेना आकाशस्थ वायु को, लक्षणा से आकाश शब्द आकाशस्थ वायु का परामर्शक है। जैसे संस्कृत में एक शब्द प्रयोग होता है मंचा क्रोशंती, क्रोशंती का अर्थ है जोर जोर से बोलता है, जोर जोर से बोलते हैं कौन, तो मंचा, मंच कहते हैं मंच को। तो मंच तो जड़ होता है या तो लकड़ी के जो तकत बने होते हैं उनका बना है या तो सीमेंट आदि का बना हुआ है, वो क्या बोलेगा जोर जोर से। इसलिए मंच शब्द का अर्थ है मंचस्था वक्तारह, मंच में बैठे हुए वक्ता वे जोर जोर से बोल रहे हैं, खूब आवेश में आकर के जोर से बोल रहे हैं, ये अर्थ निकलेगा मंचा क्रोशंती का लक्षणा से। और मंच शब्द का तो सीधा सीधा अर्थ है मंच, ऐसे आकाश शब्द लक्षणा से आकाशस्थ वायु को बताता है। तो पृथ्वी लोक और दिव लोक के बीच में जो अंतरिक्ष लोक है और उस अंतरिक्ष लोकस्थ जो वायु, उसे कहा गया यहां आकाश शब्द से। अंतरा यद आकाश, इतने का अर्थ निकलेगा वो वायु, सभी वायु नहीं, अंतरिक्ष स्थ जो वायु, और वह भी एक आदित्य का आधिदैवात्मक रूप है, क्योंकि तीन लोक है ना अलग अलग, तो स्वर्ग लोक का तो अधिष्ठात्री देव आदित्य को लिया गया, पृथ्वी लोक का अधिष्ठात्री देव अग्नि को लिया गया, अब ये आकाश शब्द से अंतरिक्ष लोक को लेकर के उसके अधिष्ठात्री देव को लेना है, उसका अधिष्ठात्री देव है वायु, वो वायु अंतरिक्ष लोक अधिष्ठाता वायु, ये भी कौन बना है, ये प्राण ही बना है। जैसे आदित्य प्राण बना, जैसे अग्नि भी प्राण का ही एक रूप है, ऐसे अंतरिक्ष लोक का अधिष्ठात्री वायुदेव भी अधिदैव में प्राण का ही एक रूप है, ये यहां पर कहा गया। और वह ससमान, स शब्द से लिया जा रहा है वो वायु रूप देवता, अंतरिक्ष लोक की अधिष्ठात्री वायु रूप देवता, और वह समान है का मतलब अध्यात्मगत नाभि स्थान में रहने वाला जो समान वायु प्राण, उसका अनुग्राहक है। यहां स समान में समान का अर्थ है समान का अनुग्राहक, अधिदैव में वो है, अपान का अनुग्राहक हुआ अग्नि, प्राण वृत्ति का अनुग्राहक हुआ आदित्य, और समान वृत्ति का अनुग्राहक है ये अंतरिक्ष लोक अधिष्ठात्री देव वायु, वो प्राण का ही रूप है, अनुग्राहक रूप और अनुग्राह्य रूप है प्राण का, अध्यात्म में समान, इनमें अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव है, तो समान इससे बताया गया। और आगे कहते हैं वायुर व्यान, तो वायुर व्यान इससे वायु शब्द से लेना सामान्य वायु, वायु के दो रूप हुए ना, एक अंतरिक्ष लोकस्थ वायु आकाशस्थ वायु, वह विशेष वायु है, उसका विशेषण है आकाशस्थत्व आकाशस्थितत्व, इस विशेषण से विशिष्ट वायु उसे वायु विशेष कहा जाएगा, वह समान वृत्ति की अनुग्राहक होगी। और व्यान नामक जो वृत्ति है एक प्राण की अध्यात्म में, जो सभी नाड़ियों में विचरण करता है वायु, उसे व्यान कहते हैं, और उस व्यान की अनुग्राहक देवता है सामान्य वायु रूप देवता, ये भी मुख्य प्राण का ही एक अधिदैव में रूप है वायु सामान्य, और वह वायु सामान्य अनुग्राहक होगा व्यान नामक अध्यात्म प्राणवृत्ति का, इन दोनों में अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव संबंध है, इसलिए यहां कहा वायुर व्यान, ये वायु व्यान है। अब कितने चार अनुग्राह्य बताएं, चार अनुग्राहक बताएं, एक अनुग्राह्य तथा अनुग्राहक बचा है, वो है उदान और उसका अनुग्राहक बताना है, उसे बताने के लिए है नवम कंडिका। नवम कंडिका में बताया जा रहा है उदान नामक वृत्ति के अनुग्राहक आदित्य के अधिदैव में एक रूपांतर को, तेजो हवा उदान तस्मात् उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियैर् मनसी संपद्यमानै। तो ह और वै ये दो निपात हैं, निपात कुछ शब्दों का संस्कृत में नाम होता है और उनके अनेक अर्थ होते हैं, निपाता नाम अनेक अर्थत्व आता है, ऐसे तो उसमें यहां पर प्रसिद्ध ये अर्थ लेना, ह वै ये दो शब्द हैं, ये प्रसिद्ध रूप अर्थ को बताते हैं। तो ये जो प्रसिद्ध तेज हैं ये आदित्य का प्राण का ही एक आदिदैव स्वरूप है, ये आदित्य और अग्नि ये भी तेजात्मक है कि नहीं, ये भी तेज ही है, और उदान का भी अनुग्राहक बताया जा रहा है तेज को ही, लेकिन आदित्य है तेज विशेष, वो स्वर्गस्थ तेज विशेष है, स्वर्ग की अनुग्राहक देवता है, अधिष्ठात्री देवता है, और पृथ्वीलोक की अधिष्ठात्री देवता रूप अग्नि है, वह तेज विशेष, वो दोनों भी विशेष तेज हो गए, जैसे वायु विशेष वायु हुआ अंतरिक्षस्थ वायु, और एक सामान्य वायु व्यान का अनुग्राहक, ऐसे यहां तेज के भी दो प्रकार करिए, एक विशेष तेज और सामान्य तेज, तो विशेष तेज में भी दो विशेष तेज बताए गए, एक आदित्य रूप विशेष तेज वो अध्यात्म में प्राण का अनुग्राहक, और अग्नि रूप विशेष तेज वह अनुग्राहक है, है? किसका, अपान का, अपान, और वायु विशेष अंतरिक्षस्थ वह समान का, और वायु सामान्य व्यान का, और अब तेज का बताना है अनुग्राहक, अब का ये कहना उदान का अनुग्राहक बताना है, तो उदान का अनुग्राहक कौन है, तो कहा तेज। यहां तेज से लेना तेज सामान्य, तेज विशेष नहीं, उसका कोई विशेषण नहीं, वो केवल तेज सामान्य, जैसे वायु सामान्य। और वो तेज सामान्य भी मुख्य प्राण का ही अधिदैव रूप विशेष है, पांच रूपों में से एक रूप है प्राण का, और वह अनुग्राहक है उदान का, इसलिए कहा कि तेजो है वही उदान, उदान है का अर्थ है उदान का अनुग्राहक है, और उदान है सुषुम्ना नाडीस्थ जो अध्यात्म वायु विशेष, उसे उदान वायु कहा जाता है, उदान नाम का प्राण वृत्ति भेद, और उसको अनुग्रह, उस पर अनुग्रह करता है ये तेज सामान्य। इसीलिए जब तक इस उदान वायु को तेज सामान्य का अनुग्रह प्राप्त होता रहता है, तब तक ये शरीर में उष्णता प्रतीत होती है, ये तेज का अनुग्रह उदान को प्राप्त हो रहा है। ये हम कैसे समझे, तो जीवित शरीर जो होगा ना वो गर्म रहता है, उष्ण रहता है, तेज भी उष्ण स्वरूप है, और वो अपना औष्ण्य गुण इस शरीरस्थ उदान को प्रदान करता रहता है, और वह उष्ण स्वभाव उदान जब तक इस शरीर में रहेगा तब तक शरीर भी उष्ण रहेगा, और मान लो श्वासोश्वास बंद भी हो जाए अंतिम समय में, सारी बाह्य इंद्रियों की वृत्तियां भी शांत हो जाए, श्वासोश्वास भी न चल रहा हो, तब भी यदि शरीर ठंडा नहीं पड़ा है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित नहीं करता है, वो कहते हैं अभी इसके अंदर ही उसके प्राण है, और शरीर ठंडा पड़ गया यदि तो फिर माना जाता है कि वो निकल गया, अब नहीं रहा, ये मृत्यु हो गई। तो ये इसलिए कहते हैं कि तस्मात उपशांत तेजा, तो यानी जिस कारण से तेज सामान्य ये उदान वायु का अनुग्राहक है, तस्मात उस कारण से जब तक प्राण को इस शरीर में बनाए रखने का निमित्तभूत प्रारब्ध रहता है, कर्म रहता है जीवन का हेतुभूत, तब तक प्राण इस शरीर में रहते हैं पांचों विभेद, और उसमें से ये उदान वृत्ति भी रहती है, और वो उष्ण स्वभाव है, तेज स्वभाव है का मतलब, और उसके वो उदान के रहने से ही शरीर गर्म रहता है, शरीर में औष्ण्य प्रतीत होता है, क्योंकि वह तेज स्वभाव है, तेज से अनुग्रहित होता है, और जब वो प्रारब्ध शांत होता है तो बाह्य तेज का उदान वायु को औष्ण्य मिलना भी बंद होता है, सप्लाई बंद, बिजली नहीं आएगी, तो फिर लाइट भी नहीं जलेंगे, पंखे भी नहीं चलेंगे, एसी भी नहीं चलेगा, फ्रिज भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जैसे प्रारब्ध शांत हो जाता है तो ये जो अधिदैव स्वरूप है ना, सभी के सभी पांचों के पांचों, इनका अनुग्रह अध्यात्म वृत्तियों को मिलना बंद होता है, ये अनुग्रह नहीं करते फिर, और अनुग्रह करना बंद हो जाता है तो फिर जो उदान वायु के पास में जितना पहले से पावर बैंक में उसके वो हैं औष्ण्य, उतना तो रहेगा इसमें, शरीर को गर्म रखेगा। और जैसे पावर बैंक में से भी पावर समाप्त हो जाता है तो फिर उसे चार्ज नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो ये उदान वृत्ति फिर सबको लेकर के इस शरीर से उत्क्रमण कर देती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं तस्मात उपशांत तेजा, ये जो मरणासन्न पुरुष है तभी मृत घोषित किया जाता है जब उपशांत तेजा हो जाता है, यानी उसका तेज यानी औष्ण्य शरीर से पूरा पूरा निकल जाता है। तेज शब्द से ले लो तेज स्वभाव उदान वायु को, और ये उपशांत होता है, सबको लेकर के निकल जाता है। उस समय फिर ये कहते हैं मनसी संपद्यमानई इंद्रिय सह, तो बाह्य इंद्रियों का तो व्यापार पहले से ही बंद होता है, मन में आ जाता है और मन कुछ समय तक वो व्यापार करता है, भावी शरीर का जन्म का प्रारब्ध का निर्धारण रूप व्यापार करता है ना, वो कर्म की फिल्म देख करके कल बताया था। और फिर वो मन का भी व्यापार शांत होता है और वो मन के साथ जीवात्मा सारे इंद्रिय मन इन सब के साथ जीवात्मा मुख्य प्राण के पास आता है, फिर वो मुख्य प्राण इस उदान वायु को लेकर के इन सब को लेकर के इस शरीर से निकल जाता है। कहां के लिए जाता है तो पुनर्भवम प्रतिपद्यते, ऐसे ऊपर से जोड़ देना। तो पुनर्भवम में भव शब्द का अर्थ है शरीर, भवति उत्पद्यते इति भव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो भव शब्द का अर्थ निकलता है शरीर, जो उत्पन्न हुए वो शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए भव। और पुनः का अर्थ है दूसरा, फिर से दूसरा शरीर धारण करता, यानी पुनर्भवम का अर्थ निकलेगा शरीरांतरम, दूसरे शरीर को वह प्राप्त कर लेता है, इस शरीर को छोड़ करके जाता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। तो जाता है तो अकेला प्राण ही जीव के साथ जाता है या और सबको लेकर के जाता है, तो कहा कि मनसी संपद्यमाने इंद्रिय सह, ये सह अर्थ में तृतीया है, मन और बाह्य इंद्रिया इन सब को लेकर के साथ में जाता है। इसलिए पंद्रहवें अध्याय में कहा गया गीता के मनस षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति शरीरम यदो आपनोति यच्चा पित्रामतीश्वर गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधा निवाशः। तो इन सब को साथ में लेकर के जाता है जब शरीरांतर का ग्रहण करना होता है, तो इस शरीर से उत्क्रमण करता है तो इनको यहीं छोड़ करके नहीं जाता, इनको यहीं छोड़ करके जाएगा तो सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने कहा है इनको संभाल करके रखना, जब तक संसार में भोग भोगने हैं, भोग के उपकरण हैं, इनको खो दिया तो फिर आंख को खो दिया तो हर एक जन्म में जन्मांध बनना पड़ेगा, इसको इनको कहीं छोड़ना नहीं। और यदि श्रोत्र इंद्रिय को छोड़ा तो फिर जन्म जन्म तक बधिर ही रहना पड़ेगा भविष्य में, इसलिए इन सबको साथ में संभाल करके ले जाता है। ये भी नहीं कि ये कहें कि थोड़ा हम रहते पीछे से आते आप निकल जाओ, गृह तो एतानि संयाति, साथ में लेकर के जाता है, पहले आगे करता है इनको बेहोश इनको करके फिर अपना लेकर के जाता है साथ में। हाँ, ये सह अर्थ में तृतीया होने से सह शब्द का अध्याय कर रहा है, इनके साथ जाता है। दशम मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हरिओम।